ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बताया है। उन्होंने भारत की ओर से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया ताकि आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में उन्होंने भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रखा। ऊर्जा मंत्री ने बिजली उत्पादन क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा पहुंच में दशकों की प्रगति को उजागर किया। उन्होंने सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2032 तक 900 गीगावाट बिजली उत्पादन है। बैठक में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादक भी घोषित किया गया। श्री मनोहर लाल ने ऊर्जा दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा और जैव ईंधनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड्स की सराहना की है। डॉ जयशंकर ने कल हेग में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर विल्डकैम्प के साथ चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। विदेश मंत्री नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय साझेदारी और संबंध मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की और वैश्विक स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमृतसर में अटारी बाघा संयुक्त चेकपोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिल्का में सादिक में प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह कल शाम से फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन समारोह का स्तर कम कर दिया गया है और इसे जनता के लिए कल से खोल दिया जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला लिया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह 10 बजे राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध समाप्त करने के लिए सीधी बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत के बाद कहा कि पुतिन से वार्ता सकारात्मक रही और दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पुष्टि की है कि रूस संभावित शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन रूस के साथ तुर्की, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में शांति वार्ता करने को तैयार है। उन्होंने पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया। झारखंड में तेज वर्षा, आंधी, तूफान और बिजली चमकने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग गढ़वा जिले के मेराल गांव में मारे गए जबकि 5 लोग बिजली गिरने से घायल हो गए। बेंगलुरु में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कल शाम स्थिति से निपटने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों के में अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनवानी ने कहा कि मुंबई में भी कल से मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है।
Today we have updated the orange color warning for Karnataka, particularly for 20 and 21. Also, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra are likely to get very heavy to extremely heavy on 29th or 21 to 22nd. Mumbai will also receive moderate to heavy rainfall from 21st onward. So this is the rainfall scenario. If we talk about North India regarding heat wave, there is nothing, no chance of a heat wave intensifying.
मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों की शुरुआत नकारात्मक रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 81,815 पर आ गया जबकि निफ्टी 73 अंक फिसलकर 24,871 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हालांकि दोनों टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हारने के बाद प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।